प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्यवचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
हाथों को दिखा दो मसीहा, मुझको उन्हीं से छू लो मसीहा। आंसू बहाओ चरण में तुम्हारे, आंसू बहाओ चरण में तुम्हारे। जल्दी हाथों को दिखा दो मसीहा, जीते हाथों को दिखा दो मसीहा।
पटती हूँ मंजिल पे
दिखा दो मसीहा, मुझको उन्हीं से छोड़ो मसीहा, आंसू बहाओ चरण में तुम्हारे, आंसू बहाओ चरण में तुम्हारे, झीते हाथों को दिखा दो मसीहा, झीते हाथों को दिखा दो मसीहा, झीते हाथों को दिखा दो मसीहा, झीते हाथों को दिखा दो मसीहा।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा नमस्कार। हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम बाइबल पवित्र शास्त्र के अध्ययन के विषय में चर्चा कर रहे हैं और हमारा मुख्य विषय है बाइबल अध्ययन की रूपरेखाएं। पिछले कार्यक्रम में हमने इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा की और हमारा विषय था क्या पवित्र बाइबल एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमने ये भी सीखा कि बाइबल 66 पुस्तकों का एक ग्रंथ है जो दो भागों में बटा हुआ है, पुराना नियम और नया नियम। आज हम एक अन्य प्रश्न के ऊपर विचार करने जा रहे हैं। सो इससे पूर्व के हम अपने कार्यक्रम में कुछ आगे बढ़ें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे महाप्राकर्मी हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमको सामर्थ्य और बुद्धि दें कि हम आपके पवित्र वचन पर मन लगा सकें, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें ताकि हम आपके सत्य को ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि हम इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें ताकि हम अधिक से अधिक आपसे प्रेम कर सकें और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। प्रेमी पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं जबकि हम इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र बाइबल की रूपरेखा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, हमारी सहायता करें कि ये कार्यक्रम हमारे लिए आशीष का कारण बने और हम वास्तव में बाइबल के अध्ययन के ढंग को सीख सकें ताकि इस ढंग के द्वारा हम पवित्र बाइबल के अध्ययन के द्वारा पूरा पूरा लाभ उठा सकें, पवित्र बाइबल का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी ठहर सके। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी समस्या में उलझा हुआ है या किसी घोर अपराध में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें जिससे कि वो जान ले कि आप ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा विषय है बाइबल अध्ययन की रूपरेखाएं, सो आज हम दूसरे प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है किस प्रकार बाइबल सबसे अनोखी पुस्तक है। पहला प्रश्न था कि पवित्र बाइबल किस प्रकार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न है किस प्रकार पवित्र बाइबल सबसे अनोखी पुस्तक है। मेरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपका भी प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। श्रोता, पवित्र बाइबल अनेक कारणों से एक अनोखी व निराली पुस्तक है। इसके दो लेखक हैं, एक तो पवित्र आत्मा तथा दूसरा है मनुष्य। जी हाँ, हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल के दो लेखक हैं, एक तो परमेश्वर है और दूसरा मनुष्य है। वास्तव में पवित्र बाइबल को 40 भिन्न भिन्न लेखकों ने लिखा है और इसके लिखने में 1500 वर्षों से अधिक का समय लगा है। उनमें से अनेक लेखक तो ऐसे हैं जिन्होंने आपस में कभी भी एक दूसरे से भेंट नहीं की, एक दूसरे का दर्शन नहीं किया, और इन 40 लेखकों में आपस में कोई साठ गांठ भी नहीं हुई। केवल दो या तीन लेखक आपस में अवश्य ही एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से भेंट कर सके थे, किंतु अधिकांश लेखक ऐसे हैं जो एक दूसरे के विषय में कुछ नहीं जानते। वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले, फिर भी उन्होंने एक ऐसी पुस्तक की रचना की कि उस जैसी निरंतरता विश्व की किसी दूसरी पुस्तक में देखने को नहीं मिलती। ये बिना भूल चूक के भी लिखी गई पुस्तक है, इसमें किसी प्रकार की भूल चूक नहीं है। प्रत्येक लेखक ने अपनी पीढ़ी में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रत्येक लेखक की अपनी सीमाएं हैं, उनके जीवन भूलों चूकों से भरे हैं। जी हाँ, वे साधारण मनुष्य हैं, सुख दुख भोगी व्यक्ति हैं, और उनके जीवनों में नाना प्रकार की भूलें हैं और उनके जीवन भूल चूक से भरे हुए जीवन हैं। किंतु जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा तो उन्होंने इसमें कोई भूल नहीं की, कहीं पर भी कोई गलती नहीं की है, उसे पूर्ण सिद्धता के साथ लिखा। उदाहरण के रूप में प्रभु के सेवक मूसा में अनेक भूलें व कमियां पाई जाती थीं, किंतु जब उन्होंने पेंटाट्योक अर्थात पंच ग्रंथ लिखा तो वहां उन्होंने कोई भूल नहीं की। और इस प्रकार पवित्र बाइबल मानवीय पुस्तक होने के साथ साथ परमेश्वरीय पुस्तक भी है, क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा है, ऐसा व्यक्तित्व है जो भूल नहीं करता। मनुष्य भूल कर सकता है, और जबकि ये पुस्तक मनुष्य के द्वारा लिखी गई, फिर भी इसमें किसी प्रकार की भूल चूक नहीं है। इसलिए हम विश्वास करते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल मानवीय पुस्तक होने के साथ साथ परमेश्वरीय पुस्तक भी है। तब यहां दूसरी मुख्य बात यह है कि पवित्र बाइबल अति मानवीय पुस्तक है। पहली बात हमने ये देखी कि पवित्र बाइबल के दो लेखक हैं, मनुष्य और परमेश्वर, और दूसरी विशेषता यह है जो इसके अनोखेपन को प्रकट करती है कि पवित्र बाइबल अति मानवीय पुस्तक है। इसे सभी वर्ग के लोगों ने लिखा है, धनवान और कंगाल, अति बुद्धिमान तथा साधारण वर्ग के लोग, सभी प्रकार के लेखकों ने इसको लिखा है। इसके लेखक सभी वर्ग से संबंध रखते थे और इसलिए ये मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तथा वर्ग के लिए उपयोगी है। ये निर्धन के लिए भी उपयोगी है, धनवान के लिए भी उपयोगी है, ये भले मनुष्य के लिए भी उपयोगी है और दुष्टजन के लिए भी उपयोगी है, ये बुद्धिमान के लिए भी उपयोगी है, ये साधारण बुद्धि के वर्ग के लोगों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसके लेखक सभी वर्ग के लोग हैं। उदाहरण स्वरूप वैद्य लूका। वैद्य लूका की यूनानी भाषा बड़े उच्च स्तर की शास्त्रीय यूनानी भाषा है, किंतु शमौन पत्रस मछुआरे ने बड़ी साधारण यूनानी भाषा का प्रयोग किया है, किंतु परमेश्वर ने दोनों के लेखों को सामर्थ्य के साथ प्रयोग किया है। दोनों के लेखों के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण हुआ है। वैद्य लूका के लेखों द्वारा बुद्धिमान और ज्ञानी लोग परमेश्वर को पहचान सके हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला अनंत जीवन का आनंद दिया है, और पत्रस के साधारण लेखों के द्वारा अनेक साधारण लोगों ने अपने साधारण विश्वास के द्वारा परमेश्वर को पहचाना है, उसको ग्रहण किया है। और इस प्रकार से दोनों लेखकों के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण हुआ है और शैतान का उद्देश्य नाश किया गया है। पवित्र आत्मा ने दोनों को अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करने की पूरी पूरी छूट दी है, किंतु पवित्र आत्मा ने उनसे वही लिखवाया है जो कि परमेश्वर वास्तव में कहना चाहता था। यही पवित्र बाइबल का आश्चर्य है। जी हां मित्र, यही पवित्र बाइबल का एक आश्चर्यकर्म है, एक अद्भुत बात है कि पवित्र बाइबल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा संचारित पुस्तक है। एक ओर लेखक को पूरी पूरी छूट है, किंतु उसको मार्गदर्शन देने वाला पवित्र आत्मा है। सारी स्वतंत्रता के साथ पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, उसकी प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर ने लेखकों के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा किया है। वही बात कही गई है जो परमेश्वर कहलाना चाहता है, और इसलिए ये पवित्र शास्त्र बाइबल का आश्चर्य कहलाता है। तब यहाँ पर तीसरी बात है, पवित्र बाइबल परमेश्वरीय पुस्तक है। पहली बात ये कि पवित्र बाइबल मानवीय और परमेश्वरीय दोनों पुस्तक है, और दूसरी बात कि पवित्र बाइबल अति मानवीय पुस्तक है। तब तीसरी अनोखी बात पवित्र बाइबल में ये है कि ये परमेश्वरीय पुस्तक है। श्रोता, पवित्र बाइबल में लगभग 2500 बार परमेश्वर कहता है, यहोवा की ये वाणी है, या परमेश्वर ऐसा कहता है इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ये बात इस बात को प्रकट करती है कि ये परमेश्वरीय पुस्तक है। परमेश्वर ने ये पूर्णता स्पष्ट किया है कि परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा बोल रहा है, परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा मनुष्य से बात कर रहा है। दूसरे शब्दों में, इस पुस्तक के पीछे परमेश्वर है। ये वो पुस्तक है जो आप तक जीवन पहुंचा सकती है, क्योंकि इस पुस्तक में जीवन है। इस पुस्तक के पीछे जीवन का दाता है। इस पुस्तक में बोलने वाली सामर्थ्य, जीवन देने वाला परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए ये वो पुस्तक है जो आपको जीवन दे सकती है, आप तक जीवन पहुंचा सकती है। आप इसके द्वारा परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी नाशमान बीज के द्वारा नहीं, अविनाशी बीज के द्वारा है जो सदा जीवित और अटल है। जी हां, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार ये किसी नाशमान वस्तु के द्वारा या नाशमान बीज के द्वारा नहीं है, वरन उस बीज के द्वारा है जो अविनाशी है, जो सदा जीवित और अटल है। ये परमेश्वर का संचार है। इसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य से बोलता है, बातचीत करता है। परमेश्वर को जो कुछ मनुष्य से कहना था, उसे वह मनुष्य से कह चुका। पवित्र बाइबल में वो सारी बातें संचित की गई हैं। अब वह चुप है, अब परमेश्वर नहीं बोलता, किंतु वह पवित्र बाइबल के द्वारा मनुष्य से बोलता है, बात करता है। उसे समाचार पत्र देखने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर को किसी बात के विषय में बताने के लिए समाचार पत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा, तो मनुष्य ने किसी ऐसी नई बात की खोज नहीं की जिसका ज्ञान परमेश्वर को पहले से ना हो। जी हां मित्र, ये विचार करने वाली बात है। जब मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था, तो मनुष्य ने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिसके विषय में परमेश्वर ना जानता हो। परमेश्वर सब कुछ जानता है, और सब कुछ परमेश्वर के ज्ञान में है, और उसने सब बातों को पवित्र बाइबल में प्रकट किया है। इसलिए यदि मनुष्य किसी बात की खोज करता है, तो वो परमेश्वर के ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर सब बातों को जानता है। पवित्र बाइबल का परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने उस ब्रह्मांड को बनाया है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें मनुष्य चलता फिरता है, जिसकी मनुष्य खोज करता है, समुद्र के नीचे, पृथ्वी पर, आकाश में, बादलों में, किसी भी स्थान में मनुष्य जाता है, खोज करता है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। उस सब कुछ का रचयिता परमेश्वर है और यही परमेश्वर पवित्र बाइबल का परमेश्वर है। तब यहां पर अगली बात है कि पवित्र बाइबल दिव्य और मानवीय दोनों है। अब ये पवित्र बाइबल की एक अन्य अनोखी बात है कि पवित्र बाइबल दिव्य है, अर्थात परमेश्वरीय पुस्तक है, स्वर्गीय पुस्तक है, और वो मानवीय दोनों है। एक प्रकार से ये हमारे प्रभु जी के समान है। यदि आप पवित्र बाइबल को देखें तो आपको उसमें पूरी तरह से मनुष्य का हाथ दिखाई देता है, किंतु दूसरी ओर यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक विश्वास के साथ पढ़ें तो आप उसमें अलौकिक शक्ति को देख सकते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल दिव्य और मानवीय दोनों है। ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के समान है। प्रभु यीशु मसीह जब चलते चलते थक गए, जब वो यरूशलेम से होते हुए सामरिया को जा रहे थे, तो वास्तव में एक लंबा रास्ता है, वो इस रास्ते पर चलते चलते थक गए थे, और जब थक गए तो एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गए। यद्यपि वो परमेश्वर थे, फिर भी वो शरीर में थे, परमेश्वर ने देह धारण किया था, वो मनुष्य भी थे। पवित्र बाइबल संपर्क स्थापित करने वाली पुस्तक है। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में थक गए, किंतु जब वो उस स्त्री से जो सामरी स्त्री कहलाती है उससे बातचीत करते हैं, उसके समक्ष परमेश्वर के भेदों को खोलते हैं, तो वो परमेश्वर की बातों को उसके समक्ष प्रकट करते हैं। पवित्र बाइबल संपर्क स्थापित करने वाली पुस्तक है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके द्वारा हम परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये संदेश पहुंचाने वाली पुस्तक है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाती है। ये आज परमेश्वर की ओर से मनुष्य से बोलती है और इसी वचन के द्वारा मनुष्य मनुष्य से बातचीत करता है। मनुष्य अपने हृदय का संदेश परमेश्वर के वचन के द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। किसी महान बिशप ने पवित्र बाइबल के संबंध में इस प्रकार से लिखा है कि बाइबल दो अमरताओं के मध्य एक गलियारे के समान है, जो परमेश्वर के मसीह तक हमको पहुंचाती है। उसके अदृश्य पग पुराने नियम में गूंजते हैं, किंतु नए नियम में हम आमने सामने उससे मिलते हैं, उससे भेंट करते हैं। ये केवल मसीह के द्वारा है जो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है और मेरे पापों की क्षमा और शाश्वत जीवन प्रदान करने के लिए वो मुझको प्राप्त हुआ है। मैंने उसको ग्रहण किया है। जी हां मित्र, हम पवित्र बाइबल में दो बातों को देखते हैं। हम पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की बातों को गूंजता हुआ देखते हैं, उनके विषय में नबूवतों को पढ़ते हैं, किंतु हम नए नियम में उस परमेश्वर को आमने सामने देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये बात जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं हमारे जीवन में पूर्ण होती है। हम परमेश्वर के प्रेम को कैलवरी के क्रूस पर देखते हैं, उसको हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में देखते हैं, और जब हम उस पर विश्वास लाकर पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं तो ये कैलवरी का क्रूस और उस पर लटका हुआ प्रभु यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा और शाश्वत जीवन प्रदान करता है। पुराने नियम का सार मसीह है, पुराने नियम का सार मसीह है, और नए नियम का सारांश यीशु शब्द में है। इस भेद को स्पष्ट रूप में समझिए, पुराने नियम का सार मसीह है और नए नियम का सारांश यीशु शब्द में है, और संपूर्ण बाइबल का सारांश यह है कि यीशु ही मसीह है। अब यहां पर तीसरा प्रश्न है, आप ये कैसे जानते हैं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से है? और ये बड़ा रुचिकर प्रश्न है, ये अवश्य पूछा जाना चाहिए और इसका उत्तर भी अवश्य दिया जाना चाहिए, किंतु समय अभाव के कारण हम यहीं पर ठहरेंगे। अगले कार्यक्रम में हम इसी प्रश्न के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। हमें आशा है कि आपने आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से लाभ उठाया है। हमारे पास थोड़ा समय है, अच्छा होगा कि हम आज के बाइबल अध्ययन की कुछ विशेष विशेष बातों की पुनरावृत्ति कर लें। हमारा प्रश्न था कि बाइबल किस प्रकार सबसे अनोखी पुस्तक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि इस पुस्तक के दो लेखक हैं, एक तो परमेश्वर है और दूसरा मनुष्य। दूसरी बात ये थी अनोखेपन की कि बाइबल अति मानवीय पुस्तक है, और इसके अनोखेपन की तीसरी बात ये थी कि पवित्र बाइबल परमेश्वरीय पुस्तक है, और तब चौथी बात यह है कि पवित्र बाइबल दिव्य और मानवीय दोनों पुस्तक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पवित्र बाइबल वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, और पुराने नियम का सार मसीह है और नए नियम का सारांश यीशु शब्द है, और इस प्रकार से संपूर्ण बाइबल का सारांश यीशु मसीह है। अब इन वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।